أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير میرا عکس قرآن کے آئینے میں. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کو اگر ہم ایک آئینہ بنا لیں اور جس طرح ہم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا رنگ ڈھنگ اپنے نئے نقش فیچرز دکھتے ہیں, بالکل قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں انسان جب بالکل بغیر کسی اوپر رکاوٹ کے کسی پردے کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عکس دکھتا ہے. آپ جب بھی کبھی کسی بھی قرآن کی محفل میں آئیں, کبھی کہیں بیٹھے ہوں, کبھی جمعہ کا خطبہ سنیں, تو آپ اس وقت کیسا فیل کرتے ہیں؟ یعنی اب میرا سوال ہے آپ سے اور آپ خود سے پوچھئے, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سے پوچھئے کہ جب میں کسی قرآن کی کلاس میں ہوتی ہوں, نمبر ایک, جب میں کسی جمعہ کے خطبے میں موجود ہوتی ہوں, کسی لیکچر کو سنتی ہوں, ایون آپ کہیں خود نہیں ہوتے تو آن لائن یوٹیوب یا کسی بھی جگہ سے کسی بھی سپیکر کو جو قرآن سنت کے ناطے سے عمل کی باتیں بتائیں, تو اس وقت آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ مطمئن ہوتی ہوں, اندر سے اطمینان اور سکون آتا ہے, یا بے چین ہوتی ہوں, پریشان ہوتی ہوں, کیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ بس یہ ہے آپ, آج یہ ہے ہمارا موضوع, میرا عکس قرآن کے آئینے میں. اور ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ قرآن کا مطلوب انسان سیریز, جو پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے. ہر سال ہم اسی طرح سے سیریز میں لیکچرز کو لیتے ہیں تاکہ جو ایک لیکچر سنے وہ اگلا بھی سنے. آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی آیتوں ہی کے اندر رہیں گے. بہت زیادہ اپنی باتیں تو کرنی بھی نہیں چاہیے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا, وہ صرف کیلو کال ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ایک آئینہ ہے اور مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ قرآن ایک ایسا خوبصورت آئینہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں, شرط یہ کہ ہمیں وہ سمجھ آ رہا ہو, تو ہم اس وقت اپنی اصل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک آئینے کو ذہن میں لائیے, آپ آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو عکس دکھتا ہے نا, یہ سبھی نے مثال کی. اور خواتین تو آئینہ بہت ہی دیکھتی ہیں, جاتے جاتے بھی آئینہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, گاڑی کے شیشوں میں سے بھی دیکھتی ہیں. آپ تو سیل فون ہاتھوں میں ہیں, اسی میں بھی بہت سارے کیمرے اور آئینے موجود ہیں نا. بلکہ میں نے تو دیکھا کہ دوسروں کی آنکھوں میں بھی اپنے آنکھیں ڈال کر اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں امیج دکھنا چاہیے نا. آپ سب تصور کریے اس وقت, ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سوچئے, آئینہ ہے اور آپ ہیں, آئینہ سامنے ہے اور آپ بھی ہیں, لیکن عکس نہیں بن رہا. اگر چاہیں تو پریکٹیکل کر لیں, کیا وجہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا عکس نہ دکھے؟ دو تین وجوہات ہیں. پہلی بات ہے کہ آئینہ تو ہے, مرر ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہے. پہلے دور میں لوگ سنگار میز کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیتے تھے, یاد ہوگا آپ کو, کور شیشے پہ ڈالا ہوتا تھا, ضرورت پڑتی تھی کھولتے تھے اور پھر ڈھک دیتے تھے. ٹی وی پہ بھی لوگوں نے نقاب پہنایا ہوتا تھا, جب دل کرتا تھا اس کو کھول لیتے تھے. ایسی ہے نا. تو ایک وجہ یہ کہ آئینہ تو ہے لیکن اس کے اوپر کور ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آئینہ ہے لیکن دھندلا ہے, فوگی ہے. اب میں آئینہ سامنے رکھ لوں اور اس میں میری تصویر نہیں کیونکہ آئینہ دھندلا ہے. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آئینے پہ زنگ لگا ہوا ہے, رسٹی گلاسز یا مرر. کبھی کبھی پرانے آئینے ہوتے ہیں کئی جگہ پڑے ہوئے مرر, تو اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہوتا ہے نا. چوتھی وجہ کیا ہے کہ میں آئینے کی رینج میں نہیں ہوں, یعنی آئینہ ادھر ہے اور میں ادھر ہوں, یعنی میرا فیس ادھر ہے, تو میرا اس کا فوکس نہیں ملتا. ایسی ہے نا. اگر یہ چاروں عذر دور کر دیے جائیں کہ آپ آئینے کے سامنے بھی ہیں, آئینہ شفاف ہے, صاف ہے, کلیئر ہے, فوگی نہیں ہے, رسٹی نہیں ہے, اور اس کا اینگل بھی ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو اپنی اصل شکل دکھتی ہے. یہاں علم اور عمل دونوں کو ساتھ لیجئے گا. ایک ایک لفظ میرے آپ کے لیے ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے. قرآن پڑھنا یہ آئینہ ہے, اور جس میں امیج دکھتا ہے نا وہ میرا آپ کا عمل ہے. सवाल लिख लें, दिल में सोच लें, कुरान पढ़ते हैं तो अमल क्यों नहीं होता, कुरान मेरे दिल में क्यों नहीं उतरता। और जिसने कभी फातिहा से नाज तक कोई एक भी सफ़र तय किया, चाहे दौरे कुरान से ही, सबीलुल जन्ना नहीं मिला, अभी कुरान तफसीर नहीं कर सके, सिर्फ दौरे कुरान पूरा पहले से तीसवें पारे तक सुना हो और अभी तक अमल ना बदले, तो इन चार में से कोई एक वजह ज़रूर होगी। या आपका दिल रस्टी है, कल्ला बलरान आला खलूबिहिम, सूरत मुतफ़िफ़ीन में अल्लाह ताला कहते हैं उनके दिलों पे जंग लग चुका है, अल्लाह ना करे कैफियत ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वली हो सकती है, कभी वला हुम फीहा गिशावत उनकी कैफियत हो सकती है। लेकिन इल्म हो, हम पढ़ें, हम पढ़ाएं और हमारा अमल ना बदले, ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल वही बात है कि आईने में इमेज दिखता है। इसी तरह इल्म के बाद अमल बदलना चाहिए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आज लोग चार लफ्ज़ पढ़ के खुद को आलिम और आलिमा कहलाना पसंद करते हैं, और चार लोग तारीफ़ें करने वाले मिल जाएं तो हवा भी भर जाती है, और हम लोगों के जुमलों, लोगों की अकीदतों और लोगों की मोहब्बतों के अंदर अपने आप को बड़ा नेक समझने लगते हैं। हम में से नेक वही है जिसका दिल खशियत वाला हो चुका है। लोग कहते हैं कुरान पे अमल भी करना था, अच्छा हमने तो समझा पढ़ना ही काफ़ी था, पढ़ाना ही काफ़ी था। और इसकी दलील ले लीजिए कि सहाबा कराम को एक बार एक आयत अल्लाह के नबी ने बताई, बस जब नाजिल होती थी कोई आयत आकर बता दी जाती थी, कभी दोबारा नहीं कहना पड़ा। हर आयत पे सहाबा के जहन में सवाल उभर जाते थे कि अल्लाह के नबी क्या करें, या सलूना का माजा युनफिकून। सहाबा के सवालों पे या सलूना का की आयतें कुरान में मौजूद हैं, गिनती के सवाल, और वो भी वो सवाल होता था जो उस वक्त समझ नहीं आती थी बात, अदरवाइज सुन के बस कहते थे अल्लाह के नबी इतना बता दें कि हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या हक है। अल्लाह के नबी बता देते थे, लोग कहते थे अच्छा मैं ऐसे ही करूँगा। हत्ता कि उस दौर का एक देहाती अनपढ़, जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल अनपढ़ शख्स, भी इतना बाशऊर था कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है, कहता है अल्लाह के नबी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे बारीकियाँ नहीं आती समझ, यानी मुझे बारीक बातें नहीं समझ आती, मुझे इस्लाम की वो चंद बातें गिनवा दें कि अगर मैं वो कर लूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँ। अल्लाह के नबी ने बेसिक्स इस्लाम की बता दी कि शिर्क ना करना, नमाज पढ़ लो, और जो भी चंद चीज़ें थी उसने कहा बस अब मैं ना इससे कम करूँगा ना ज़्यादा। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि बस फराइज तक रहेगा वो, कोई लंबी चौड़ी सुन्नत नफिल, कोई सलातुल तस्बी, कोई लंबी 500 दानों की तस्बी, कोई हर साल हाथ जुमरा नहीं कहा उसने, बस मोटी मोटी चंद बातें पे उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं यही करूँगा, ना इससे कम करूँगा ना ज़्यादा। तो वो वहाँ से जब जा रहा था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से जिसने जन्नती को देखना हो इसको देख लो, दैट्स इट। शराब तीन किस्तों में हराम हुई, अरबों की घुट्टी में शराब पानी की तरह घुसी हुई थी। जैसे आज आप फिजी ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे, हॉट ड्रिंक है वैसे तो असल में ये, लेकिन सीना भी जलाते हैं, अंदर भी आग लगती है, शुगर भी बढ़ती है, जो गंद बला हम बस एक ड्रिंक्स के नाम पे बाहर की बनी हुई खूबसूरत चमकती बोतलों में पीते हैं ना, कोई बुरा नहीं समझता, बल्कि कोई मेहमान आ जाए तो उसको ना पिलाएं तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, इतने फ्रेश ऑरेंज छोड़कर हम पता नहीं कितनी पुराने और क्या उसमें डला हुआ है वो जूस खोल खोल के पीते और पिलाते हैं, चीनी से भरे हुए, किसी को नहीं शौर। खैर ये तो एक मोहब्बत की बात थी ना, लोग शराब पीते थे। अल्लाह ताला ने पहले इशारे में कह दिया कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा फ़ायदा है भी ना तो इससे नुकसान ज़्यादा है। फ़ी हिमा इस्मन, और जो उसका नफ़ा है वो फ़ायदे से थोड़ा है, क्योंकि अरब लोग शराब के नशे में जब धुत हो जाते थे ना तो कसरत से सदका करते थे, फयास बहुत थे, सखी बहुत थे, ऊँटों को ज़िबा कर कर आकर गरीबों में जाके बांटते। शराब और जुए का नाम जिक्र कुरान में इकट्ठा आया, वो क्योंकि ये दोनों साथ चलती थी, जब शराब का नशा खूब सर पे चढ़ता तो फिर जानवरों का गोश्त काटते फिर उस पर जुआ खेलते, तो बड़े बाद में जब नशा उतरता तो कहते चलो कोई बात नहीं शराब पिया लेकिन हमने नशे में काम कितने अच्छे किए। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी मंतक है इसको बंद कर दो। फिर दूसरे में अल्लाह ने ज़रा से शराब को मजीद आगे किया कि नमाज नवल्ला तकरब उसला तवन तुम सुकारा। और तीसरे दर्जे पर जब शराब हराम हुई तो हाथों में जाम थे, होंठों को लगी भी थी चीज, और जब ये सुन लिया कि आज से शराब हराम है तो वहीं छोड़ दिए, मटके फोड़ दिए। मदीना की गलियों में कितने दिन तक शराब की बू आती रही। कोई नया नया कंसाइनमेंट आया हुआ था, बाहर से इंपोर्ट होती थी, तो लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी हम यहूद को बेच दें क्योंकि उन पे तो नहीं हराम ना बकौल उनके। तो कहा कि जिसका पीना हराम उसका बेचना भी हराम। कहा सिरका बना लें, डाइल्यूट करके पानी डाल डाल के पतला कर लें। कहा जिसका कसीर हराम उसका कलील भी हराम, बस फिर मटके फोड़े। आज ये हमारे अंदर ये एब्जॉर्प्शन और ये बात सुन के मानना क्यों नहीं? हम रोज एक बात सुनते हैं और हम रोज ही नहीं उस पर अमल करते, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सुन सुन के सुन हो गए। जो शुरू से जितना सुनते हैं ना वो अब उतने ही सख्त लफ्ज़ है, नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं तो कहूँगी स्टबन हो चुके। जो बेचारा कभी कभार कोई बात सुन ले ना तो वो रो रहा होता है कुरान की महफिल में। अच्छा कुरान ये कहता है, कुरान में ये है वो है, कुरान ये ऐसा कहता वैसा कहता। लेकिन जो अक्सर ही सुनता सुनाता है वो कहता है अच्छा मेरा ध्यान नहीं था, मैं ज़रा फ़ोन भी चेक कर लूँ। इवन इस वक्त भी हम सब बाहर अंदर के लोग देखें कि हम 100% एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर कर पा रहे हैं। जो चीज़ बहुत कसरत से मिलती है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मेरा सवाल यह है कि ये वही कुरान है जो सहाबा ने सुना था और ये वही कुरान है जो हम सुन रहे हैं, उनकी कैफियत क्या थी और हमारी क्या? एक आयत उतरती थी और सहाबा की तरजीहात बदल जाती थी। आपने बीसियों बार सुनी होगी और अल्लाह रहम करे दर्स देने वाले सबसे ज़्यादा इसी आयत पे फोकस करते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, चौथे पारे की पहली आयत सूरत आले इमरान, कि तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी मनपसंद चीज़ अल्लाह के रास्ते में ना दो। आप अक्सर इसी आयत पे दर्स सुनेंगे और ख़ास तौर पर जब कोई चंदे की डिमांड करनी हो, कोई डोनेशन। हम पाकिस्तानियों ने अल्लाह माफ़ करे लोगों को पिक एंड चूज़ वाला दीन दिया है। हर वो चीज़ जिसमें हमें कोई फ़ायदा दिखता है हम उस पर ज़्यादा ही जोर देते हैं। मर्दों ने औरतों को ऐसा अंडर एस्टिमेट कर दिया कि शौहर को मजाजी खुदा बना दिया, शौहर राज़ी होगा तो ही जन्नत में जाओगी, है ना? यानी हमने पूरा कुरान तो पढ़ा ही नहीं। आप हांडी में सब कुछ बराबर का डालेंगे ना फिर टेस्ट बनता है। सिर्फ नमक डालने से भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ मिर्चों से नहीं, सिर्फ प्याज से नहीं, एक रेशियो प्रोपोर्शन के साथ एक बैलेंस तरीके से खाना बना ले वो अच्छा बन जाएगा। आज हमने दीन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दिया, कहीं तकवे के नाम पे और कहीं ख्वाहिशात के नाम पे। इसलिए जब कोई चीज़ अपनी असल से आगे पीछे हो जाती है ना तो वो तासीर खो देती है। डॉक्टर के पास सलाह ना करे किसी को जाना पड़े बीमारी की सूरत में, तो वहाँ दवा जब वो देता है तो वो साथ साथ कहता है ये गोली सुबह खानी है, ये दोपहर को, ये शाम को, ये आधी खानी है, ये पूरी खानी है, इसको दूध के साथ खाना है, इसको खाली पेट खाना है। करते हैं ना अमल और अपनी मर्जियाँ करने लगे, क्या फ़र्क पड़ता है, एक मैं दो खा लेती हूँ जल्दी ठीक हो जाऊँगी। वो कह रहा था दूध के साथ पीना नहीं, मैं दूध के साथ नहीं, मैं ऑरेंज जूस के साथ पी लेती हूँ। नहीं करते ना, और करेंगे तो हो सकता है कि दवा का रिएक्शन हो जाए। आज दीन हमारे अनाड़ियों के हाथों में है, आज नबियों के हाथों में दीन है। जो चीज़ मुझे दीन की अच्छी लगेगी मैं आपको रोज़ वही बयान करूँगी, जहाँ मेरा मौका लगेगा बस लगेगा मैं कुरान की आयतें पढ़ा पढ़ा के आपको रुलाऊंगी, आपको मायूस करूँगी या आपसे पैसे हथेला लूँगी। इतना ही इमोशनल आपको करूँगी कि आप जाते जाते जेबें खाली कर जाएंगे, आप अपने जेवर उतार जाएंगे। मैं बदनीयती की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त जिस दर्द की बात कर रही हूँ उसको समझिए कि जो अमल में आज हमारे दीन है कुरान है, अगर इसको देकर कोई कुरान लिखे, मिसाल है कि सारे मुसफ कुरान के किसी एक ऐसे मुल्क में आप जाते हैं जहाँ पे तर्जुमा ही नहीं है उस जुबान में, अरबी में, कोई कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इस ज़ुबान में, मसलन कोई भी आप चाइनीज़ ज़ुबान या कोई ऐसी अनयूजुअल ज़ुबान ले लीजिए और वहाँ के मुसलमानों को देखकर तुम कुरान लिख लो, तो सच बताइए कि आज हम मुसलमानों के कौल को, फेल को, अमल को, हमारी शादियों को, हमारी गमियों को, हमारी सफाइयों को, हमारी सुथराइयों को देखकर कोई नॉन मुस्लिम कुरान लिखे तो वो कैसा होगा? सोच के भी रोंगटे नहीं खड़े हो जाते। हमारी तो किताब ज़बर ज़ेर के साथ महफूज है माशाल्लाह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले, इसके बावजूद आज उम्मत का क्या बिगाड़ है। सुबह अज़ानें होती हैं, अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज़ आज भी अजान के साथ आती है तो कितने लोग उठते हैं, औरों को छोड़िए हम सब इस हॉल में कितने 100 लोग बैठे हैं। आप लोग ज़रा सोचिए कि आज सुबह आपके घर में जितने भी अफराद हैं, माशाल्लाह अल्लाह सबको सलामत रखे, सेहत दे, आफियत दे, मर्दों को भी औरतों को भी, क्या घर के हर मर्द और 8-10 साल के बच्चे ने मस्जिद में जाके फजर पढ़ी? जिन घरों में पढ़ी वो हाथ खड़ा करें। यानी जिस घर से हर मर्द घर का, यानी एक मर्द भी उस वक़्त घर में नहीं था, और जितनी ख़वातीन बैठी हैं और जो नहीं हैं, आपके घर की सारी ख़वातीन ने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर फजर उठकर पढ़ी, वो हाथ खड़ा करें। और आप माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं, आप में से अक्सर कुरान सुनते सुनाते हैं। अगर ये सवाल किसी शादी में कर लिया जाए, और शादी भी वो जो 3-4 दिन से चल रही हो, वलीमे वाले दिन पूछिए शादी हॉल में माइक पे आके कि आज इस वलीमे में मौजूद जो लोग हैं उनमें से किस किस ने मस्जिद में जाकर जमात से फजर पढ़ी, हाथ खड़ा करें। मेरे लिए दूल्हा क्या, घर वाले सारे शर्मिंदा हो जाएंगे, नहीं लेट आए थे, आधी रात हो गई थी, थक गए थे। खवातीन किचन समेटती रह जाती हैं, मेहमानों को देखती रह जाती हैं, कहाँ से बरकत आए हमारी ज़िंदगियों में। हम वो शादी जिसको निकाह मिन सुन्नती के नाम पे कभी कार्डों पे छापते थे, आज सिर्फ आपकी एक शादी शुरू से आखिर तक की कुरान के और हदीस के आईने में पेश कर दी जाए, तो क्या वो वाकई फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली शादी होगी? कोई गैर मुस्लिम हमारी एक शादी अटेंड करे, और गैर मुस्लिम नहीं, मैं आपको भी दावत दूंगी, जाके सुनिएगा। इब्राहिम ग्रीन एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इब्राहिम भी ग्रीन आते हैं उनके लास्ट नेम में, मुझे कुछ इश्काल हो रहा है नाम में, यूके में होते हैं। जब वो रिवर्ट हुए इस्लाम में आए तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान आए थे, और यहाँ वो जो कुछ देख कर गए, आप नेट पे जाके उनके नाम के साथ कुछ भी सर्च करें आ जाएगा। उन्होंने जो कमेंट्स दिए हम मुसलमान और पाकिस्तानियों की शादियों पे, वो सर झुकाने को काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, कौन कहता है कि ये मुस्लिम वेडिंग है? और आप तो भी बड़े सिक्योर एक गांव एक देही इलाके में बैठे हैं ना, इस वक्त बच जाएंगे बहुत सारी फरसूदा चीज़ों से। जब आपके पास और पैसा आएगा ना, फिर जब आपके बाहर के मुल्कों के फेरे लगेंगे ना, फिर जब आपकी गाड़ियां बड़ी से बड़ी होती जाएंगी ना, अभी भी पैसा होगा लेकिन हो सकता है कि कुछ रुकावटें हों। हम जितना दुनिया के भंवर में फंसते जाते हैं ना, अपनी जान माल इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। इसका ये नहीं मतलब कि सारे पैसे वाले बुरे हैं, सारे बाहर रहने वाले बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद बाहर से ही आई हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ ऐसी चीज़ जो है नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फिर आपकी आजमाइशें ज़्यादा हो जाएंगी। छोटी रोड पे हैं तो 2-4 गाड़ियों से ही आप अपनी गाड़ी को बचाएंगे ना, तो जब आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े ट्रकों और ट्रालों से भी अपने आप को बचाना पड़ेगा। जितनी दुनिया बढ़ती है ना, उतना हमारा दीन बचाना मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने ये जो बात फरमाई थी ना कि मेरी उम्मत का फितना माल है, आपने फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत से गुरबत का डर नहीं है, अफलास या फ़क्र का डर नहीं है कि मेरी उम्मत मुफलिस हो जाएगी, फ़कीर होगी, मुझे डर ये है कि इनके पास माल बहुत आ जाएगा। मैं अपने ज़ुबान से बता रही हूँ ना, कभी खोल के पढ़े तो इतने लफ्ज़ हैं। कभी आपने खुदा न खास्ता किसी को कुत्ता काट ले और आपने उस शख्स को देखा हो, बावला हो जाता है। जैसे कुरान में एक मिसाल दी गई है ना, ला यकूमून, नहीं वो खड़े होंगे मगर वो ऐसा खड़ा होगा जैसे ये तखब्बत खुश शैतान मिन अलमस, जिसको जिन चिमट जाए, किसी खुदा न खास्ता किसी पे आसेब हो जाए, इस तरीके से ख्वाहिशात मेरी उम्मत के लोगों को डस लेंगी। आज हम कोई भी चीज़ लेते देते वक्त औरत की तस्वीर लाजमी, जब तक एक दीवार पे खड़ी एक औरत का पोस्टर ना आए हमारे कपड़े ही नहीं बिकते। हमारा एक जोड़ा जो हम अपने घर में लाते हैं, मुझे नहीं पता कितने का लाते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी एक औरत पहन के कपड़े दिखाती है आपको, कितना आम हो गया। आज के बच्चे बच्चियों को पूछे ना कि कभी कपड़े ऐसे भी बिक जाते थे कि बस थान से कटवा के ले आते थे, आज तो दर्जी को तस्वीर ना दो तो कहता है समझ ही नहीं आ रही ये कौन सा टोटा किधर लगना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी को अगर दो पीसों में कोई सूट दे देता था ना तो बुरा मनाते थे, कहते थे टोटों में से लिया, कट पीस है, सस्ते मिल जाते थे, थान में से इकट्ठा लेंगे तो महंगा होगा, तो चलो भाई ये कमीज है या ये बाजू है या शलवार अलग है तो बुरा मनाते थे। और आज 20-25 टुकड़ों में बटा हुआ एक सूट एक थैले में डालकर एक औरत को पहनाकर सजाकर संवार कर हमारे हाथों में दिया जा रहा, क्या कान पे झू रेंगे, क्या हमें बुरा लगे। और वो टेलर साहब और मास्टर साहब को जब वो तस्वीरें देते हैं और वो औरतें नहीं देखते साथ, और हीरोइनों के नाम दे दे के फिल्म फिल्म में से जोड़ा देखो, किसी ने बड़ी अदा से कहा था बाहर थी बेटे की बरी बनानी थी तो कहने लगी मैंने तो काम आसान कर दिया, पहले बहन को कहती थी कभी कुछ कहती थी तो बनता कुछ था, कभी कुछ कहना कभी कुछ, तो अब तो मैं वो मास्टर साहब को कहती हूँ वो फिल्म फिल्म देख ले, वो हीरोइन ने जो पहना हुआ एक जोड़ा वो बना दे, फिल्म में दुल्हन ने जो पहना वो बना दे, अब मेरा काम आसान हो गया और हमें बुरा भी नहीं लगता। जो ना खूब था वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब ये जितनी बातें मैंने अभी तक की हैं आप इन सब को कुरान के आईने में रखिए तो आपको इसमें इतने जरासीम दिखेंगे जैसे कभी आप ये पानी का ग्लास जो इवन फिल्टर्ड पानी जिसको आप कहते हैं ना आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, इसमें इतने जरासीम होने आपका पीने को दिल नहीं करना। हम जब कुरान के आईने में खुद को देखते हैं और हकीकत है कि हमें समझ आ चुकी हो तो फिर हमें दुनिया का हर रंग अजीब लगता। और 98% मुस्लिम आबादी हमारे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह, दिन ब दिन हमें तो दुनिया में इस्लाम और नबी सल्लम के तौर तरीकों को आम करने वाले लोगों में शामिल होना चाहिए ना। कोई एक दफ़ा हमारे बॉर्डर को क्रॉस कर जाए तो वो कहे कि वाह सुभान अल्लाह मज़ा आ गया। आप देखिए कि ये जो इस्लाम फैला है ना 100+ मुल्क है इस वक्त, ये कहाँ से फैला है? आपने कभी सोचा कि मक्का में थे अल्लाह के नबी, मदीना में आए और अल्लाह ने आपकी मोहलत ख़त्म कर दी ज़िंदगी की? आपकी ज़िंदगी में इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में था, फिजिकली आप तबूक की सरहदों तक होके आए, लेकिन ये बाहर कैसे आ गए, ये कैसरो किसरा, ये रोम, ये फारस, ये ईरान, यहाँ कैसे इस्लाम आया? सहाबा के ज़रिए आया, चलते फिरते नमूने बने इस्लाम के, जंगों में भी दूसरी जगहों पे गए, तिजारत में भी गए, जो जिधर गया ना वो वहां रोशनी फैला गया। जैसे खुशबू की एक फुटकी पानी में डाल देना सारे पानी में खुशबू हो जाएगी, रंग की एक चुटकी डाल दीजिए पानी में तो पूरा रंग या सब्ज हो जाएगा, पीला हो जाएगा, सुर जो रंग होगा वो होगा। साहबे करम सिबगत अल्लाह में ऐसे ढले हुए थे कि वो जिधर गए उनको रंग गया, अपने रंग में रंगे। और हमारा हाल यह है कि हम फिल्मी गानों के रंगों में रंगे जाते हैं, हीरोइनों की अदाएं हम अपनी दुल्हनों को आज सिखाते हैं, आज फोटो सेशन ना हो तो कहते हैं शादी नहीं हुई। इस्लाम तो बदला, रिवायत बदल गई, बड़े छोटे की हया ना रही, किसी जगह एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला खानदान का खड़ा हो जाता था बहू बेटियों की जान पे पड़ जाती थी, गवाही देते, किसी को अपने अब्बा जी याद आ रहे, किसी को सुसर जी याद आ रहे। मैं अपने नाना की मिसाल दे सकती हूँ, कहीं उनको देख लें तो मेरी मुमानियों की तो जान निकल जाए। शादी में अगर वो कहीं से वो रुख्सती के वक्तों में आते थे अंदर या किसी वक्त में, औरतों को जान पे बन जाती थी, दुपट्टे छोटी छोटी बच्चियां सरों पे दुपट्टे ले रही हैं आप, और ये पहनावे नहीं थे तब सीधे साधे, किसी ने लहंगे पहने हैं तो किसी ने कवट कपड़े होते थे, हाजी साहब आ गए, बशीर साहब आ गए, हाजी साहब आ गए, लड़की को ऐसे उठा के ले जाना जल्दी करो देर हो रही है देर हो रही, किसी की जरूरत नहीं कि अब्बा जी को कुछ गए। आज अब्बा जी तो किनारे पर लगाए बैठे होते हैं सारे अब्बे बेचारे, जरूरत है अब्बा जी की, वो कहेंगे मूवी खराब हो जानी है, वो फोटो सेशन हो रहा है, जरूरत नहीं होती थी। घर के बुजुर्गों की इतनी इज्जत थी, मैं नहीं कहती कि कोई आर्टिफिशियल की रिस्पेक्ट हो या होनी चाहिए, लेकिन एक रोब था एक इज्जत थी, बाप घर में आ जाए तो घर का माहौल वही रहता था जब अब्बा जी के ना होने पर होता था। छोटे छोटे बच्चे बाप के आने पर ऐसे सीधे हो जाते थे जैसे वो इंस्पेक्टर को देख के गाड़ियों की लाइनें सीधी होती हैं। आज बदल गया, हमारे बच्चों को पता ही नहीं नाना है नानी है दादा है दादी अब्बा, और अब्बा जी को भी कोई नहीं पता। मैं अक्सर बच्चियों के कपड़े देखकर सोचती हूँ इनके घर में बाप नहीं है, इनके घर में कोई नाना दादा नहीं, किसी के सामने नहीं घर से निकली, ये इस कपड़े में घर जाएगी तो इसको कोई नहीं देखेगा। तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। अब ये तो सारे छोटे छोटे आईने हैं ना हमारे, बड़े बड़े, लेकिन जो कुरान है ना, इसके आईने में देखे, आज से अपनी ज़िंदगी का एक मेयार बनाए। जब कभी कुरान की महफिल में हो और आपका दिल खुश हो, मुतमईन हो, खौफ तो होता है दिल में लेकिन उम्मीद भी लग जाए, तो इसका अंदर के अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कमी तो रहेगी, कोशिशें बढ़ाते जाए अमल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर बेचैन है, और उसका सबसे बड़ा तरीका पता क्या है, उधर जाना ही नहीं है। आप कुरान खानी कर लें, जैसे आप सब बैठे हैं, आप सबके हाथ में एक एक पारा दिया जाए, 30-30 लोगों को बांटें। मेरा ख्याल है कि यहाँ हम आधे घंटे में, क्योंकि एक पारा मोस्टली खवातीन आधे घंटे में पढ़ ही लेती हैं, मेरा गुमान है कि आज यहाँ हम 10 से 15 कुरान पढ़ सकते थे, खुश भी बड़े, बाद में एक लंबी सी दुआ कराते बाहर तक, और लंगर शरीफ खोलते हैं तो फिर देखिए क्या हाल होता है। लेकिन जब उस कुरान की सिर्फ एक आयत कहा जाता है, आओ सुन लो दर्स, तो लोग कहते नहीं मैं मजबूर, मेरी मासी आई हुई है, मेरे बच्चे घर में, मैंने बच्चे को, कितना बच्चे, वो 22 साल का बच्चा आपके कद से भी को फोटो लंबा, आप उसको फीडर में दूध देती हैं, आपने उसको अपने हाथ से रोटी देनी है, घर में कितनी मासियाँ फिर रही हैं, और क्या वो पहली दफ़ा आज इस वक्त खाना खा रहा है, आना नहीं है। या लोग कुरान पे अमल शुरू कर देते हैं कुरान सुनने के बाद, ये लिख लें जुमला, या आना छोड़ देते हैं। अमल इल्म को बुलाता है। एक रिकॉल है शायद सुफियान सॉरी का, कि जब इल्म आता है ना तो वो अमल को पुकारता है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और जब अमल नहीं आता ना तो इल्म भी रूठ जाता है। दो दोस्तों को जेहन में लाए ना, कि एक दोस्त आके बैठा है या एक सहेली इधर आई और दूसरी को कहती है तुम भी आओ, तुम भी आओ, वो आ जाएगी तो वो भी बैठी रहेगी, वो नहीं आती कहती अच्छा चलो मैं भी आती हूँ, चलो बाजार चलते हैं। इल्म और अमल भाई बहन है, ये दो दोस्त हैं, ये संगी बेली यार है या करीन है, अमल किए बगैर गुजारा ही कोई नहीं, वरना हम कुरान को ज़्यादा बदनाम करते हैं, हम ज़्यादा बुरे बनते हैं। आम तौर पे लोग आपको, आप इस आँख के कॉर्निए से देखते हैं जो हमारी आँख में लगा हुआ है अल्लाह की तरफ से, आप कुरान पढ़े ना तो लोग आपको यूं देखेंगे, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स के बड़े बड़े लेंस लेकर देखेंगे, वो उनका एक बाल दिख रहा था, यानी बस एक दिख रहा था, तो वो इसलिए तनकीद में आ गया कि वो मिसाल है कि कोई दीनदार शख्स है, दर्स देता है या देती है, वो नकाब करती हैं पर गीबत कर रही थी, तो इसलिए मैंने नकाब नहीं करना। भाई अब ये बोले कि मैंने गीबत नहीं करनी, वो दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे थे बाबा जी, तो अब दाढ़ी नहीं रखनी, देखे हैं जी हमने दाढ़ियों वाले, ये जुमले सुनते हैं ना, यानी हर बात पे अमल किस पे बदला, अमल या तो छोड़ा या कुरान छोड़ दिया। और जितनी दुनिया बाहर आपको सड़कों पे दिखती है, हर शहर में जाकर मैंने एक चीज़ तो देख ली है, एक तो मतलब मिसमैनेजमेंट तो है ही है, आबादी भी कसरत से है, जिस शहर में चले जाए लगता है सारे लोग इधर ही आ गए, इतने मुसलमान हम सब, हमारे दिल में क्यों हरकत पैदा नहीं होती? हमारे दिल में अगर ख्याल आता भी है, हम कुछ करते भी हैं, लेकिन हमारी आदतें क्यों नहीं बदलती, हमारे बातचीत करने का अंदाज क्यों नहीं बदलता, हमारी ताने देने वाली आदत तबीयत क्यों नहीं बदलती, तंज क्यों नहीं बदलता? एक बंदा कुरान पढ़ जाए घर में, पूरा घराना सीधा हो जाता, उसके अखलाक से, उसके किरदार से। वो कहते हैं ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। असलाफ में देख लीजिए, एक एक शख्स ने पूरे पूरे कबीले की हालत बदल दी। और अल्लाह सुब्हान तआला सूरत अल अराफ की आयत 170 में फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, और इनमें से वो लोग जो किताब के पाबंद है, युमस्सिक के मस्क से जुए पकड़ना, अखज भी होता है मुआखजा इत्तखजा, लेकिन यहाँ लफ्ज़ है युमस्सिक, जैसे कहते हैं ना ऐसे पकड़ना जोर से, जैसे बच्चा कभी अपने बड़े को जोर से पकड़ता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। वाकामुस्सला, और नमाज अदा करते हैं, इन्नला नुदीउ अजरुल मुस्लिहीन, हम बेशक इस्लाह करने वालों का अजर जाया नहीं करते। अब कुरान की ये आयत है मैंने आपके सामने रखी, इस आयत में एक लफ्ज़ है मुस्लिहून, एक आयत का एक लफ्ज़ मुस्लिहून, किसको कहते हैं मुस्लिह? और आप में से किसी ने जब भी कभी कुरान पढ़ा होगा ये आयत पढ़ी होगी, ठीक है, सूरह अल अराफ जब भी पढ़ी होगी ये आयत पढ़ी होगी, और जाकर कुरान में ढूंढ लीजिए, स्वात लाम खा कर रूट डालकर देखिए, तो मुसलहून का लफ्ज़ इस्लाह युसले व सुलह खैर कितनी दफ़ा आता है। लेकिन क्या हम मुसले हैं? किसको कहते हैं मुसले? मुसले वो होता है जो कुरान और नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका है, उसके बगैर वो जीता ही नहीं है। आप सब माशाल्लाह इधर जितनी बैठे हैं पांच वक्त के नमाजी हैं ना, हाथ तो खड़ा करें जिनकी कभी एक नमाज कजा नहीं हुई आज तक। अगर कभी थोड़ी आगे पीछे हो भी गई लेकिन फौरन मौका मिला पड़े वो हाथ खड़े करें। आधे लोग हैं, आज नियत कीजिए। लेकिन हम सब बड़ी मोहब्बत से यहाँ जमा हुए हैं ना, आज एक नियत करते हैं, कुछ तो लेके जाना है ना यहाँ से। बड़ी बातों को क्या करना है, पांच छह उंगलियों पे लिख लें। आज नियत करते हैं पहली अजान पे, नमाज के बिल्कुल इब्तदाई वक्त पे मैं नमाज के फर्ज पढ़ लूंगी। कितने लोग नियत करते हैं? मेरे साथ वादा करेंगे तो आपने कहना बाजी ने फिर कभी आना नहीं आना, कौन वादे वफा करता है? अपने आप से वादा कीजिए, मैं भी करती हूँ। देखिए नमाज क्या है, अल्लाह की तरफ से कॉल है। आपको मैं एक मिसाल दे देती हूँ। लोग कहते हैं पढ़ तो लेते हैं, ज़रा देर करके पढ़ते हैं, एक काम करते करते बिल्कुल जब आखिरी वक्त रहता है तो फिर हम उठते हैं। तरीका भी बता देती हूँ कि वक्त जब शुरू होता है ना, अभी अजान जब होगी ना जोहर की, सबसे पहले अपनी घड़ी पे अलार्म लगा के रखें। आपके पास आजकल कितने तरीके हैं नमाजों के वक्त देखने के, और आपकी अजानें मस्जिदों से माशाल्लाह इतनी आती हैं। आप तो इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि आपको एक एक नमाज पे छः छः अजानों की आवाज़ आती है। सुबह उठे ना तो पांचों नमाजों के औकात जो है ना उस दिन के, उस पर नज़र रख लें। अपने फ़ोन आता है ना उसका जो स्क्रीन सेवर होता है, जो खोलें तो सामने दिखता है, उस पर लिख लिया करें आज की ये नमाजें हैं। चलिए फजर जब है ही सुबह 5:30 बजे, तो मुझे कितने बजे उठना चाहिए उसके लिए? लीस्ट 5 बजे तो उठूंगी ना। इंसान वॉशरूम यूज़ करता है, वुजू करता है, थोड़ा नींद का खुमार उतरता है तो टाइम तो लगता है ना। मैंने अजान सुनते ही फ़र्ज पढ़ने, फजर की तो 2 सुन्नतें चूँकि पहले हैं, उसकी ताकीद भी बड़ी है और अल्लाह ताला में उसकी तौफीक भी दे। फजर तो हो गई, जोहर पे चलते हैं। आप में से बहुत सारी सिस्टर्स माशाल्लाह घरों को चलाती हैं, बच्चों के खाने पीने, मसरूफियत का वक्त होता है। मैं मानती हूँ कि जोहर का वक्त हमारे लाइफस्टाइल में बड़ा बिजी टाइम है, और इसकी वजह भी बता दूँ, 3 वक्त का खाना। अभी एक नाश्ते के बर्तन सिमटे नहीं तो हम दूसरे खाने की तैयारियां कर रहे थे, बल्कि खाना खिलाते हुए ही मेहमान को पूछ रहे होते हैं आप दोपहर में क्या खाएंगे। सच्ची सर शर्म से झुक जाता है बंदे का। सोने से पहले भी कह रहे होते हैं कि अच्छा अब वो भी ना रख दूं, मुटेरे हैं तो वो रख दें, है ना। खाना खाना और खाना। मुझे बाकी मुल्कों का नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी मुल्कों में अपने आप को पाया है कभी, उसी में गिन रही थी, मेरे हाले 23 कंट्रीज मुझे ऐसे ही मोटे मोटे याद आ रहे थे, और उसमें से मेरे हाले यादों में तो मैं रही भी हूँ। पाकिस्तान के अलावा मैंने किसी मुल्क में 3 वक्त खाना खाते नहीं देखा जी। अब आप नहीं आएंगे ना बाहर, की करना बाहर जाके जो उसे रोटी भी नहीं खानी दोपहर दी। और मज़े की बात है कि जन्नत के खानों का जहाँ जिक्र आता है ना, तो अल्लाह क्या कहते हैं, बुकरतम व असील, सुबह और शाम रिस्क दिए जाएंगे। हम देसियों ने तो रोने लग जाना, अल्लाह तू इत्थे बुला के सानू रोटी नहीं देती। और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो फिर नहीं, हम 2 टाइम खाना खाएंगे, लेकिन वो शाम की चाय इतनी भारी पी लेंगे कि वो एक रोटी खाने से भी ज़्यादा भारी हो जाएगी। हमारा काम ख़त्म क्यों नहीं होता? मैं अक्सर ख़वातीन को देखती हूँ, माशाल्लाह 2-2, 3-3 मासियाँ हैं, हेल्पर्स हैं, लड़कियाँ हैं घरों में, और अल्लाह की रहमतें हैं सबके ऊपर। हमने तो, आपको पता है कि हम बाहर बाथरूम भी खुद धोते हैं। आप एक बर्तन जो खाने की टेबल पे लाए हैं ना, आपका नहीं दिल करता ना उठाएं, लेकिन 2 दिन बाद भी आपने उठाना है, घंटे तक भी आपने उठाना है, और अभी भी तो आपने उठाना है, नहीं तो किसी उठाना ही नहीं है। आप तो मलकाओं और रानियों की तरह की जिंदगियां बसर करते हैं। इतनी मासियां होने के बावजूद वक्त क्यों नहीं मिलता हमारी बहनों को? रोटियां पकानी पड़ती हैं, खाने खाने पड़ते हैं। और ज़ाहिर दोपहर का खाना तो आप खाएंगे कब, जब आप सुबह डबल रोटी खाएंगे। भूख मारे ना तोड़ जाती है आपकी डबल रोटी, उसमें जान थोड़ी होती है। और वो खमीर से फुलाई हुई रोटी जिसमें शायद चंद ग्राम आटा होता है, और जो मैदे और खमीर डाल के आप खिलाते हैं, मत खिलाएं अपने बच्चों को। आप सुबह एक अच्छी साफ सुथरी अपने घर हाथों से रोटी बनाकर पराठा बना लें, अपने बच्चों को घर वालों को खिला दें। मेरा तो नहीं ख्याल कि 4-5 बजे तक भी भूख लगती है। मसनू ही चीज़ें खा के हम टाइम, और पूरे वक्त किचन में भाई, अब उतनी दफ़ा किचन खुलेगा, उतनी दफ़ा बर्तन धुलेंगे, उतनी दफ़ा निकलेंगे, अभी वो समेटेंगे तो आप पकाना शुरू हो जाएंगे, फिर पका रहे हैं तो फिर खिलाएंगे तो फिर समेटेंगे, तो शाम की चाय का वक्त आ जाएगा। शाम की चाय पीते पिलाते करते आपने कहना अब मैं चावलों का पानी रख लूँ, अब रात के लिए क्या करना है। तो एक औरत तो दिन में यकीन करें कि मेरा गुमान है कि 7-8 घंटे आपके किचन में गुजर जाते हैं। आपके कितने गुजरते हैं जी? आपके मैं आती बाहर बासूं, बस जब मुझे कोई ज़रूरत होती है मैं रहती उधर हूँ, है ना? बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त खाना। और फिर वही बात है कि पानी ज़्यादा दे दें पौधे को तो वो गल जाता है। फिर हर बच्चे का अलग खाना, घर के हर फर्द का अलग मिजाज। हमारी माएँ ऐसी नहीं होती थी पहले, एक रोटी और एक अचार, किसी को लसूड़े का, किसी दिन वैरायटी ये होती थी कि आज लसूड़े का अचार, तो कल आम का अचार, तो परसों चटनी, और एक दिन हफ्ते में बड़ी बात हो गई तो अंडा शायद बना देती होंगी माएँ, है ना? आज हमने बाजार के खाने भर दिए अपने फ्रिजों में, फिर भी वक्त क्यों नहीं? मेरा असल मसला इस वक्त खाना नहीं है, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो क्या है कि टाइम क्यों नहीं मिलता? किधर गया आपका मेरा वक्त? क्या हमारा टाइम 24 घंटे से छोटा हो गया? अब दिन कोई 15 घंटे का रह गया, 20 का रह गया। और मज़े की बात देखें कि अब रमज़ान भी खैर से आने वाला है, आप देखेंगे कि रमज़ान में बहुत वक्त मिल जाता है। वजह साफ ज़ाहिर है कि किचन बंद होता है। मेंटेन कीजिए अभी से, अब रमज़ान भी करीब है, अभी से 2 टाइम खाने की आदत डालें, अभी से दिन के चंद घंटे खाली रहिए, और अभी से ही कुरान पढ़ने के लिए नियत करें। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो रमज़ान में पूरा कुरान सुने? रमज़ान से पहले तो नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे। देखिए बात करें ना कि कुरान के आईने में खुद को देखना है ना, तो बार बार देखते हैं। कभी आप अंदर अंधेरे में देख लें तो आप कहते हैं जरा बाहर देख लूं चेहरा ठीक है, कभी आप किसी तेज लाइट में तो देखते हैं ना। कुरान को बार बार पढ़ें,